HD Smartcast।
आप सुन रहे हैं HD Smartcast और ये है लाइव हिंदुस्तान प्रोडक्शन।
नमस्कार, ये रही आज की सबसे बड़ी खबरें।
रफाएल सौदे की फ्रांस में होगी न्यायिक जांच, जज की हुई नियुक्ति रिपोर्ट। रफाएल सौदे की जांच को लेकर फ्रांस सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। भारत के साथ करीब 59,000 करोड़ रुपए के रफाएल सौदे में कथित भ्रष्टाचार की अब फ्रांस में न्यायिक जांच होगी और इसके एक फ्रांसीसी जज को नियुक्त किया गया है। एक फ्रांसीसी ऑनलाइन जर्नल मीडिया पार्ट की एक रिपोर्ट ने ये जानकारी दी है। मीडिया पार्ट ने कहा, 2016 में हुई इस इंटर गवर्नमेंट डील की अत्यधिक संवेदनशील जांच औपचारिक रूप से 14 जून को शुरू की गई थी। इसमें कहा गया कि शुक्रवार को फ्रांसीसी लोक अभियोजन सेवाओं की वित्तीय अपराध शाखा द्वारा इस बात की पुष्टि की गई। फ्रांसीसी वेबसाइट ने अप्रैल 2021 में रफाएल सौदे में कथित अनियमितताओं पर कई रिपोर्टें प्रकाशित की थी। उन रिपोर्टों में से एक में मीडिया पार्ट ने दावा किया कि फ्रांस की सार्वजनिक अभियोजन सेवाओं की वित्तीय अपराध शाखा के पूर्व प्रमुख इलियाने हाउलेट ने सहयोगियों की आपत्ति के बावजूद रफाएल जेट सौदे में भ्रष्टाचार के कथित सबूतों की जांच को रोक दिया। इसने कहा कि हाउलेट ने फ्रांस के हितों, संस्थानों के कामकाज को संरक्षित करने के नाम पर जांच को रोकने के अपने फैसले को सही ठहराया। 3 दिन और 2 मुलाकात तब जाकर राजी हुए तीरथ सिंह रावत, जाने उत्तराखंड में कैसे चढ़ा सियासी पारा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। हालांकि उन्होंने इतनी आसानी से इस्तीफा नहीं दिया है, इसके लिए 3 दिन और 2 मीटिंग की जरूरत पड़ गई। उत्तराखंड में भाजपा के अंदर सियासी मंथन पिछले 3 दिनों से राजधानी दिल्ली में चल रहा था। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने 3 दिन के भीतर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से 2 बार मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक इन्हीं मुलाकातों के बाद रावत अपने पद से इस्तीफा देने को तैयार हुए। शुक्रवार देर शाम नड्डा से मुलाकात के बाद देहरादून जाकर उन्होंने अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दिया। इससे पहले भाजपा अध्यक्ष ने मुलाकात के बाद रावत ने कहा था कि उन्होंने आगामी चुनाव व राज्य के विकास को लेकर केंद्रीय नेतृत्व से चर्चा की है। उपचुनाव के बारे में मुख्यमंत्री ने कहा था कि यह चुनाव आयोग को तय करना है कि कब चुनाव कराना है। वह शीर्ष नेतृत्व के निर्देश पर काम करेंगे। शुक्रवार को नड्डा के आवास पर मुख्यमंत्री की लगभग आधे घंटे की यह मुलाकात ऐसे समय में हुई जब रावत के भविष्य को लेकर तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। इसके पहले रावत ने बुधवार को देर रात भाजपा अध्यक्ष नड्डा व गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। वह गुरुवार को वापस जाने वाले थे, लेकिन उन्होंने अपनी यात्रा रद्द कर दी थी। इसके बाद वह शुक्रवार को एक बार फिर भाजपा अध्यक्ष से मिले। पौड़ी से लोकसभा सांसद रावत ने इस साल 10 मार्च को मुख्यमंत्री का पद संभाला था। अपने पद पर बने रहने के लिए 10 सितंबर तक उनका विधानसभा सदस्य निर्वाचित होना संवैधानिक बाध्यता है। प्रदेश में फिलहाल विधानसभा की 2 सीटें गंगोत्री और हल्द्वानी रिक्त हैं, जहां उपचुनाव कराया जाना है। कोरोना काल में चुनाव आयोग ने सभी तरह के चुनाव रोक रखे हैं। ऐसे में उपचुनाव कराए जाने का फैसला निर्वाचन आयोग पर निर्भर करता है। मोदी सरकार कोरोना फंड के तहत हर किसी को दे रही 4,000 रुपए, जाने सच। भारत सिर्फ कोरोना वायरस से ही नहीं बल्कि उसके साथ साथ कई तरह की अफवाहों से भी लड़ रहा है। वायरस से वैक्सीन तक को लेकर देश में अलग अलग अफवाहें चलती रही हैं और सरकार को हर बार सच सामने रखना पड़ा है। इस बार भी एक व्हाट्सएप मैसेज वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि सरकार हर किसी को कोरोना केयर फंड योजना के तहत सभी को 4,000 रुपए की सहायता राशि प्रदान कर रही है। तो चलिए जानते हैं क्या है इस दावे की सच्चाई। दरअसल व्हाट्सएप से लेकर सोशल मीडिया पर एक मैसेज वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि भारत सरकार कोरोना केयर फंड योजना के तहत सभी को 4,000 रुपए की सहायता राशि प्रदान कर रही है। इसमें यह भी दावा किया जा रहा है कि नीचे फॉर्म भरकर अप्लाई करने से 4,000 रुपए मिल जाएंगे। बता दें कि यह वायरल मैसेज हिंदी में है। हालांकि जब इस वायरल मैसेज की पड़ताल की गई तो कुछ और सच्चाई सामने आई। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो यानी PIB की फैक्ट चेक टीम ने इस दावे को फर्जी बताया है। पीआईबी फैक्ट चेक ने ट्वीट कर बताया कि यह दावा फर्जी है। भारत सरकार द्वारा ऐसी कोई योजना नहीं चलाई जा रही है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि फर्जी दावे को हकीकत में बदलने की कोशिश के रूप में संदेश पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी तस्वीर है। हालांकि यह स्पष्ट है कि भारत सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है। संजीवनी है वैक्सीन, एक डोज ले चुके लोगों में मौत का खतरा 92% घटा। कोरोना के खिलाफ टीके के असर को लेकर अब सटीक नतीजे सामने आने लगे हैं। पीजीआई चंडीगढ़ के एक अध्ययन में दावा किया गया है कि टीके की दोनों खुराक ले चुके लोगों में मृत्यु का खतरा 98% कम हुआ, जबकि एक खुराक ले चुके लोगों में यह 92% कम हुआ। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी के पॉल ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पीजीआई चंडीगढ़ के शोधकर्ताओं के इस अध्ययन का ब्योरा पेश किया। उन्होंने कहा कि यह अध्ययन वास्तविक आंकड़ों पर है, इसे पंजाब पुलिस के जवानों पर किया गया है। अध्ययन के अनुसार पंजाब पुलिस के 4,868 जवानों ने टीके की एक भी खुराक नहीं ली थी। इनमें से 15 की मृत्यु हो गई, यानी प्रति हजार पर मृत्यु 3.08 दर्ज की गई, जबकि 35,856 पुलिसकर्मियों ने टीके की एक खुराक ली थी, जिनमें से 9 की मृत्यु हुई। यह दर प्रति 1,000 कर्मियों पर 0.25 रही। पंजाब पुलिस के 42,720 कर्मियों ने टीके की दोनों खुराक लगा ली थी, जिनमें से 2 लोगों की मृत्यु हुई। प्रति 1,000 पर यह दर 0.05 दर्ज की गई है। सीएम योगी का फैसला, यूपी में 74,000 पदों पर जल्द होगी भर्ती। विधानसभा चुनावों से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकारी नौकरियों के लिए 74,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू करने को कहा है। उन्होंने शुक्रवार को निर्देश दिए कि यह काम पूरी पारदर्शिता व निष्पक्षता से होना है। खराब छवि वाले विद्यालयों को परीक्षा केंद्र बिल्कुल न बनाया जाए। परीक्षाएं पूरी तरह नकल विहीन होनी चाहिए। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की प्रारंभिक परीक्षा के लिए तिथि जल्द तय कर दी जाएगी। सूत्रों ने बताया कि यह परीक्षा अगस्त में कराई जाएगी। इसमें 20 लाख युवाओं ने आवेदन किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उपरलोक सेवा आयोग, उपर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, उपर उच्चतर शिक्षा चयन आयोग और उपर माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के अध्यक्षों के साथ खाली पदों पर भर्ती के संबंध में देर शाम को बैठक की। मुख्यमंत्री ने कहा कि भर्ती की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाया जाए और इसके लिए संपन्न की जाने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन पारदर्शी ढंग से किया जाए। उन्होंने बड़ी परीक्षाओं को मंडल स्तर पर और छोटी परीक्षाओं को जिला स्तर पर आयोजित करने के निर्देश दिए।
आप सुन रहे थे हिंदुस्तान का डेली न्यूज रैप, जो HT Smartcast की एक बीटा संस्करण का हिस्सा है। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे @HT Smartcast या podcasts@hindustantimes.com पर ईमेल के द्वारा सुझाव दे सकते हैं।
आप सुन रहे हैं HT Smartcast और ये था लाइव हिंदुस्तान प्रोडक्शन HT Smartcast।